ओम शांति। तो आज 25 अगस्त है और हम सवेरे से ही दादी जी को याद कर रहे हैं। इतने दिनों से सभी भाइयों ने दादी जी के बारे में बहुत कुछ सुनाया हमें, जो कि कोई भी बुक्स में नहीं है, कोई भी और क्लासेस में हमें नहीं मिलेगा। ऐसी घुए घुए बातें सुनाई। तो दादी जी का जन्म 21 जून 1922 में हुआ था और दादी जी ने शरीर छोड़ा 25 अगस्त 2007 में। तो 25 अगस्त को 10:05 पर शांतिवन में दादी जी ने शरीर छोड़ा और 26 अगस्त को फिर दादी जी को गुलाबों से सजाकर डायमंड हॉल की स्टेज पर रखा गया और फिर चारों धाम की यात्रा कराई गई, पांडव भवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, अन्य स्थानों पर परिक्रमा करा के फिर वापस ग्लोबल शांतिवन के डायमंड हॉल के स्टेज पर रखा गया और फिर अखंड योग भट्टी चली, जो कि नेक्स्ट डे 9 बजे तक चली और फिर 9:30 बजे दादी जी को बगीचे में लाया गया, जहां अभी प्रकाश स्तंभ है, और फिर सभी दादियां और बड़े भाई बहने सभी खड़े थे। दादी जी को चंदन के फूलों से सजाया गया था और फिर सभी ने ओम की ध्वनि की और दादी जी का अंतिम संस्कार किया। और फिर उसके बाद 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक वतन से संदेश आए, तो ऐसे कुल मिला के 12 संदेश हुए 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। फिर 6 सितंबर को बाबा दादा गुलजार दादी के तन में आए और फिर दादी जी की भी पधरावनी हुई 6 सितंबर को। तो इस तरह से 12 संदेश भिन्न भिन्न संदेशियों ने लाए, एक ही संदेशी नहीं थे। तो सबसे पहला संदेश जो था वो मोहिनी बहन मधुबन के उन्होंने लाया। तो मोहिनी बहन गुलजार दादी जी, फिर मोहिनी बहन न्यूयॉर्क और रुक्मणी बहन जी और वेदांती बहन जी और कैलाश बहन जी गुजरात के, इन सभी ने संदेश लाए। तो सबसे पहला संदेश है वो है मोहिनी बहन मधुबन के। तो ये संदेश था 27 अगस्त को, जो कि सुबह दोपहर में ही था ये संदेश। तो सबसे पहले जब वो वतन में गए तो उन्होंने क्या देखा, तो ये 12 ही संदेशों में हम देखेंगे कि 12 दिन में वतन में क्या क्या हो रहा है और हर 12 दिन में हमें कोई ना कोई योग का प्रयोग मिलेगा हर संदेश से, और दादी जी की और बाबा की कोई ना कोई शिक्षा है हर संदेश में। तो पहले संदेश है मधुबन जी, मधुबन की मोहिनी बहन जी का। तो जब वो वतन में गए तो उन्होंने देखा कि दादी एक छोटे बच्चे की तरह बाबा की गोद में सो रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो मोहिनी बहन आगे गए तो दादी मीठी दृष्टि दे रही थी और बाबा भी दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा आओ बच्ची। तो अभी सबके मन में ये संकल्प था ना उस समय कि दादी जी कैसे चली गई, बिना बोले कैसे चली गई। तो फिर मोहिनी बहन ने कहा कि बाबा आपने दादी को कैसे बुला लिया। तो बाबा ने कहा आ बच्ची तुम दादी से मिलो, और वहां से बाबा चले गए। फिर दादी से मोहिनी बहन जी मिल रही थी तो मोहिनी बहन ने कहा कि दादी आप कैसे आ गई, अभी तो आप ठीक हो रही थी, पहले आप बहुत सीरियस रहती थी, कितनी बार इतनी सीरियस हुई कि हमको लगता था अभी ठीक नहीं होंगी, और इस बार तो आप ठीक हो रही थी और आप कैसे चली गई, हमको बिना बताए कैसे चली गई। तो दादी कुछ नहीं कह रही थी, दादी बस मुस्कुरा रही थी और मोहिनी बहन जी बार बार यही पूछ रही थी। इतने में मोहिनी बहन की जैसे आंखें भर आई तो फिर दादी ने कहा दादी कहीं नहीं गई है, दादी आपके साथ ही है। फिर इतने में बाबा वहां पे आ गए। तो फिर मोहिनी बहन बाबा को पूछने लगी कि बाबा आपको तो इतने बच्चों के संकल्प चल रहे हैं, आपको तो बताना ही पड़ेगा कि दादी क्यों, आपने दादी को क्यों बुला लिया ऐसे अचानक से। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, 4-5 दिन से दादी ने कुछ भी नहीं खाया और तुमने ब्रह्मा भोजन लाया है ना यज्ञ का, तो भी बच्ची को ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराओ। तो फिर ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। फिर मोहिनी बहन ने फिर से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये मणि है, ये प्रकाश मणि है, और इसने अपना प्रकाश सारे संसार में फैलाया है, और इसका प्रकाश कभी लुप्त नहीं होता। इसने अपने सुख शांति का शक्ति की अनुभूति सबको कराई है। फिर भी मोहिनी बहन सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बाबा, आपको इतने सारे ब्राह्मण परिवारों के संकट जो चल रहे हैं ना, उन सबको संतुष्ट करना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि मैं ये राज ना गुलजार बच्ची के द्वारा खोलूंगा, ऐसे कहा उन्होंने। और फिर बाबा ने दादी को भोग स्वीकार किया, फिर बाबा ने भी भोग स्वीकार किया। और फिर एक और बात कही कि बच्ची, ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, और बाबा और दादी सदा साथ है, ऐसे कहते ही ये संदेश यही समाप्त हुआ। तो ये संदेश से यही शिक्षा थी कि ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, और बाबा और दादी जैसे सदा साथ है। और यहाँ पे जैसे योग का प्रयोग, जैसे बाबा ने कहा कि ये एक मणि है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, तो हम भी एक योग का प्रयोग इसमें कर सकते हैं कि मैं एक आत्मा चमकती हुई मणि, और मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, मुझसे शांति सुख शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही है, और मैं ये अनुभूति सभी आत्माओं को करा रही हूँ। तो ये एक योग का प्रयोग है। फिर दूसरा संदेश उसी दिन शाम को था गुलजार दादी जी के द्वारा। तो फिर दिल की याद प्यार लेते हुए दादी जी वतन में पहुंचे, और फिर देखा कि बहुत दादी जी का बहुत शक्तिशाली स्वरूप था। दादी जी वतन में बाबा के साथ बैठे थे, और फिर बाबा ने देखा गुलजार दादी आए, तो कहा कि आओ मेरी दिल तख्त नशीन बच्ची आओ। और फिर बाबा ने एक बाहु में प्रकाशमणि दादी को लिया, एक बाहु में गुलजार दादी को लिया, और दोनों को लेते हुए कमरे में गए, और कमरे पे दोनों को गद्दी पर बिठाया, और कहा कि आज आप याद प्यार लाई हो। तो फिर दादी ने कहा, आप मेरे लिए भी याद प्यार लाई होंगी ना आज। तो दादी जी ने कहा कि मैं आज आपके लिए तो पद्मा पद्म गुणा याद प्यार लाई हूँ। फिर दादी ने कहा कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुलजार दादी ने कहा कि दादी, आपको तो बहुत याद करते हैं। तो फिर बड़ी दादी जी ने कहा कि मेरी बहुत समय से आशा थी कि मुझे बाप समान स्थिति का अनुभव करना था, जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर सेवा कर रहे हैं वतन में, ऐसे मुझे भी था। तो फिर बाबा ने कहा कि ये बच्ची की बहुत समय से आशा थी कि ये अव्यक्त रूप से बाबा की तरह सेवाएं करे और समान स्थिति का अनुभव करे। तो गुलजार दादी ने उत्तर दिया कि बाबा, हमारी आशा है कि दादी अभी व्यक्त में रह के अव्यक्त रूप से सेवाएं करे। अभी दादी के उत्तर बड़े अच्छे हैं इस संदेश में। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये जो बच्ची है ना, ये मेरी मुरब्बी बच्ची है, और ये मेरा समान बच्चा है, और जैसे बाबा ने इसको स्थूल देने की विल की थी, इस तरह ही इसको समान स्थिति की अनुभव करने की विल चाहिए थी। और ये बच्चा मेरा तीन तख्त नशीन विशेष बच्चा है, ये मेरा गुरु भाई से भी बड़ा बच्चा है, और ऐसे मुरब्बी बच्चे की मैं बात कैसे नहीं मानूं, तो इसकी दिल की आश में कैसे नहीं रखूं। तो फिर बाबा तो कम से कम दादी बोलकर तो आती ना हमको। तो फिर दादी मुस्कुराई, और दादी ने कहा, ब्रह्मा बाप बोलकर गया था क्या? तो ऐसे ही ये सीन यहाँ हुई। फिर बाबा ने कहा, और क्या समाचार लाई हो? तो फिर दादी ने कहा कि बहुत सारे वीआईपी तक दादी का जो ये संदेश पहुंचा, और सब दादी को बहुत याद कर रहे हैं, और चारों ओर दादी के प्यार में सब समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बच्ची जो है ना, ये बच्ची ने बहुत गुप्त और सूक्ष्म पुरुषार्थ किया है, और जैसे कि निर्विघ्न रही, निर्विकल्प स्थिति रही, निर्विकल्प निर्मल वाणी में जो रही ना, उसका ये फल है। और बहुत गुप्त पुरुषार्थी, दिल से पुरुषार्थ किया, दिल से दूसरों की दुआएं मिली उसको। तो फिर दादी ने कहा कि दादी ने तो आंख भी नहीं खोली, दादी बेड पर थी तो दादी ने तो आंख भी नहीं खोली। तो बाबा ने कहा कि दादी पेशेंट नहीं थी उस समय, लेकिन पेशेंस में रहने की शिक्षा दे रही थी। तो जैसे हम लोगों से पूछ रहे थे इसके बारे में, तो दादी को कुछ इंद्राग्रह में हेमरेज हो गया था ना, और दादी को फिर यहाँ से अहमदाबाद पहले लेके गए थे, और फिर वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गई थी, और फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था अभी तो कुछ नहीं होगा। फिर संदेश लेके आए थे तो बाबा ने कहा था कि उनको ब्राह्मणों के संगठन में लेके जाओ, और फिर 3 दिन में कॉटेज को तैयार किया गया था दादी के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल का सेटअप, जिधर ऑक्सीजन, जिधर वेंटिलेटर, जिधर नर्सेस थी, दादी के लिए एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, सब कुछ खरीदा गया। 3 दिन में सब कुछ तैयार करके दादी को शांतिवन में कॉटेज में लाया गया। तो फिर दादी कॉटेज में थे वहां पर, और माँ की ये सब सीन है कि दादी जैसे कि पेशेंट नहीं थी, लेकिन पेशेंस में रहने का शिक्षा दे रही थी सबको। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम लोगों ने नोट किया होगा कि दादी जब भी इतनी बीमार भी थी, तो बीमारी भी उनको कभी दुख की फीलिंग नहीं थी, दुख भी उनको स्वप्न मात्र भी नहीं था, इतनी तकलीफ होती थी। और जब भी दादी को पूछते थे कि दादी आपको कुछ हो रहा है, तो दादी कभी भी कुछ नहीं बोलती थी। तो बाबा ने कहा कि देखो, ये भी दादी आप लोगों को शिक्षा दे रही थी कि पेशेंट होते हुए भी पेशेंट की स्थिति में रहना क्या होता है। तो दुख की लहर स्वप्न मात्र भी नहीं थी, जन्म से ही दादी ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जैसे कि मम्मा बाबा की सहयोगी थी, ऐसी आत्मा थी। तो फिर गुलजार दादी ने कहा कि इतनी समान आत्मा थी, तो साकार में इस आत्मा की आवश्यकता है ना फिर तो। तो फिर बाबा ने कहा कि एक तरफ तो दादी ने धुन लगाई हुई थी कि कर्मातीत अवस्था को पाना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है, और एक तरफ आप लोग कहते हो कि हमारी दिल रखो। तो बाबा इस मुरब्बी बच्चे की, समान बच्चे की बात सुनेगा या आपकी बात सुनेगा? तो दादी ने कहा कि हम तो बहुत है और दादी तो एक है, तो आपको हम बहुतों की बात सुननी चाहिए, ऐसे कहा गुलजार दादी। तो फिर दादी जी ने कहा कि मैं बहुत समय से अव्यक्त रूप का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहती थी, इसीलिए बाबा ने मुझे बुलाया। और फिर बाबा ने कहा कि ये बच्ची सदा स्वमानधारी थी, सदा निर्विघ्न थी और सम्मानधारी मूरत थी, इसलिए बाबा इसकी बात को मना नहीं कर सकता था, और हमेशा विजयी बच्ची थी, तो बाबा इसको गिफ्ट देगा। और फिर बाबा ने इस संदेश में कहा कि 12 दिन बाबा इस बच्ची को वतन में रखेगा, इस तरह बाबा ने कहा। फिर एक दूसरी सीन इमोजी है यहाँ पर, वहां पर 10-12 मुख्य एडवांस पार्टी के लोग इमोज हुए, जिसमें मम्मा, दीदी, विश्व किशोर दादा और कोई इमोज हुए, और सब दादी को चिपकने लगे, पकड़ने लगे और कहने लगे दादी हमारी है, दादी हमारी है। तो गुलजार दादी कहने लगी अरे ये सब तो नारे लगाने लगे। तो फिर उसके बाद सीन ऐसा था कि दादी कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं वहां पे रह के नहीं कर सकती थी, अब मैं करती हूँ। मतलब अब मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं जहाँ जा सकती हूँ, मैं सबका चार्ट देख सकती हूँ, मैं जो सेंटर पे जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ, मैं भक्तों को साक्षात्कार करा सकती हूँ, मैं भक्तों को देख सकती हूँ कि कैसे वो प्रार्थना करते हैं। तो ये सीन थी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, समय को समय लाना है, अभी बहुत दुख भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और अभी जो भी और बच्चे जो भी है, छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई गुड़ियों का खेल करना है, ऐसी छोटी छोटी बातों में समय लगा रहे हैं, तो अभी अपना शक्ति स्वरूप प्रैक्टिकल में लाने को सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो मैंने कहा बाबा कोशिश तो सभी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कोशिश कर रहे हैं, मैं भी बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता हूँ। फिर ये सीन यही खत्म हुई। फिर बाबा ने कहा देखो दादी ने क्या एग्जाम्पल दिया, अचानक चली गई ना दादी, तो अचानक और एवर रेडी का पाठ पढ़ा के गई। तो फिर बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में बच्चों के लिए दादी का एक दृष्टांत है, जो बाबा ने कहा था अचानक होना है और एवर रेडी रहना है। तो दादी ने सभी को ये पाठ पढ़ाया कि सभी का अगर दादी से प्यार है तो सभी को एवर रेडी माना बाप समान और बनना है, तो फिर एवर रेडी बनना है। तो ये स्थिति का रिस्पॉन्ड लेना है, संकल्प में भी रिस्पॉन्ड दो, वाणी में भी रिस्पॉन्ड दो, कर्मयोगी स्थिति में भी रिस्पॉन्ड दो। तो दादी ने कहा मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को ये कहना। और फिर दादी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे की, दादी ने कहा कि जैसे मैंने बाबा को फॉलो करते सम्मान में रह करके छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं ली, आज दुआओं का इनाम बाबा मुझे दे रहा है। तो आप सभी भी ये दो शब्द स्वप्न में भी नहीं बोलना। ये वाक्य इस बुक की एंड में भी है और ये यहाँ पर भी और बार बार आता है कि सम्मान में रहना है और हर छोटे बड़े को सम्मान देना है। सम्मान देके खुद भी परिवर्तन होना है और औरों को भी परिवर्तन करना है, ये कहा। फिर बाबा ने कहा कि आपको पता है जब दादी आई तब क्या हुआ? तो जैसे हम सब जानते हैं ना कि प्रकृति के पांच तत्वों ने भी दादी जी का स्वागत किया, क्योंकि दादी जी प्रकृति जीत और माया जीत थी। और इसका रहस्य जो कैलाश बहन जी है उनके संदेश में बाबा ने बताया। तो ये सीन यहाँ खत्म हुआ। फिर सभी बहन भाइयों की याद प्यार दी और फिर ये संदेश यहीं खत्म हुआ। तो इस संदेश से हमको शिक्षा मिली कि सम्मान में रहना है और छोटे बड़े सबको सम्मान देना है। और जैसे दादी जी कह रहे हैं कि मैं सूक्ष्म शरीर द्वारा कैसे सब तरफ चक्कर लगाती हूँ, तो ये योग का प्रयोग है हमारे लिए कि हम भी कैसे चक्कर लगा के प्रकाश दे सकते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा सकते हैं। फिर तीसरा संदेश था 28 अगस्त को मेरी बहन न्यूयॉर्क के। तो फिर जब ये वतन में गए तो जैसे कि बहुत बहुत शक्तिशाली किरणों द्वारा इनका स्वागत हुआ वतन में। और जैसे मम्मा और बाबा हमेशा वो देखते थे वतन में बैठे, तो आज बाबा और दादी जी सामने बैठे हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वतन में जब वो जाते तो दोनों बाबा और मम्मा कुछ मम्मा नहीं दादी जी और बाबा थोड़े व्यस्त दिख रहे, जैसे कि कुछ प्लानिंग चल रही है। तो फिर बाबा ने कहा कि आपकी दादी हमेशा बिजी रहना चाहती थी, कभी भी फ्री नहीं रहती थी। उनका हर संकल्प जो रहता था वो सेवा के प्रति रहता था कि विश्व की सेवा कैसे हो, तो इस तरह से रहता था। और दादी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अब मेरे लिए कोई टाइम हो, और हमेशा कि यज्ञ की सेवा कैसे हो, यज्ञ की पालना कैसे हो। तो अभी दादी जी का जो स्वरूप है वो डबल सेवा का स्वरूप है। तो यज्ञ की पालना कैसे हो, उसका विस्तार कैसे होना है, और दूसरा कि दूसरी तरफ राजधानी की जो स्थापना है उसमें दादी जी का भी विशेष पाठ है ऐसे। और फिर दूसरी बात यहाँ पे कही कि दादी कह रहे कि मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप सबको लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत समय से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही सब कुछ कार्य करती थी। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बड़ी चीज हुई है। और फिर दादी जी ने कहा कि अभी जो अनन्य बच्चे हैं सबके पास में परिवर्तन होना ही है। और फिर कहा कि दादी का रूप कभी भी पुरुषार्थ का रूप नहीं था, सदा संपन्न रूप का पाठ था। सदा संपन्न रूप का पाठ बजाती थी दादी। हमको याद है एक बार एक भाई जी यहाँ पे कह रहे थे कि हमारी जो दादी थी ना, वो कभी ऐसे बैठ के योग करेगी या पुरुषार्थ के लिए जा रही हमें पुरुषार्थ करने, ऐसा कभी नहीं कहते थे दादी। वो प्रेम स्वरूप थी और संपन्न स्वरूप थी। दादी को कभी पुरुषार्थ करते किसी ने नहीं देखा। तो यही बाबा कह रहे कि सदा संपन्न रूप में पाठ बजाती रही। इसी तरह आप सभी भी संपन्न और अव्यक्त रूप से पाठ बजाते रहो, बजाओ तो अनुभव करेंगे और क्लियर फीलिंग आएगी कि हम भी दादी के साथ पाठ बजा रहे हैं। इस तरह से ये संदेश यहाँ था। ये था मोहिनी बहन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के। तो ये तीसरा संदेश था। सीता वेदांती बहन नैरोबी के। ये था 29 अगस्त को। तो फिर ये जब वतन में गए तो देखा कि बाबा और दादी जी कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने देखा वेदांती बहन आए, तो उन्होंने कहा बच्ची आप भी आओ। तो वेदांती बहन ने कहा मैं तो बहुत लाई हूँ। तो कहा नहीं आप भी आके देखो क्या हो रहा है। तो बाबा पेपर पे कुछ बना रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि दादी आप 2 दिन से वतन में, तो आपने क्या किया? तो कहा कि पहले दिन जब मैं आई वतन में तो बाबा ने मुझे कहा आराम करो। फिर दूसरे दिन बाबा ने मुझे ज्ञान सरोवर, मधुबन, शांतिवन, ग्लोबल हॉस्पिटल और अन्य सब स्थानों पर लेके गए बाबा मुझे। और आज प्लानिंग हो रही है कि मुझे क्या करना है, कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो बाबा ने कहा आज दादी को बहुत बहुत विशेष कार्य करने हैं। तो दादी आज बड़े बड़े साइंटिस्ट और विद्वान और ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास दादी जी को जाना है। फिर दादी जी को बहुत फास्ट सेवा करनी है, सब कुछ फास्ट करना है, इसीलिए प्लान बन रहा है। फिर बाबा ने देखा कि भोग लेके आई है बच्ची। तो बाबा ने कहा कि बहुत समय से मुन्नी बहन और मोहिनी बहन ने तुमको खिलाया ना, तो आज जब तक तुम वतन में हो तब तक बाबा तुमको खिलाएगा। ऐसे करके बाबा ने उनको खिलाया। और अभी जितने भी संदेशियां आ रही थी वतन में, सब बाबा को यही कह रहे थे कि बाबा दादी को सब लोग बहुत याद करते। तो इस संदेश में बाबा ने कहा, बच्ची सभी दादी को बहुत याद करते हैं, ये बाबा को भी अच्छी तरह से मालूम है और दादी को भी मालूम है। ऐसे कहा। तो फिर इसने हाँ, फिर दादी ने कहा कि मेरी दिल की आशा है कि जब तक मैं वतन में हूँ सब मुझसे वतन में मिलने के लिए आए। अब तो संदेशिया वतन में जाती है। तो फिर दादी ने कहा कि जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी ना, तो उसको स्पष्ट अनुभव होगा कि बाबा और दादी वतन में क्या कर रहे हैं। तो ये संदेश था इस संदेश से। फिर एक सीन इमर्ज हुआ जहाँ पे पहले सबकी याद कर दी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, दादी जी की। तो फिर वेदांती बहन ने कहा कि मुन्नी बहन जैसे कि दादी को पकड़ के रखी और छोड़ ही नहीं रही थी, एकदम टाइट पकड़ के रखी और जोर जोर से, फिर बाबा ने आया और दोनों को छुड़ाया और फिर गले लगाया और बहुत जैसे कि प्यार दिया और बल भरा। फिर बाबा ने दोनों का हाथ पकड़ के कहा कि आप लोगों को अभी बहुत काम करना बाकी है और बाबा आपसे कराएगा। इस तरह से ये संदेश खत्म हुआ। तो यहाँ से जैसे योग का प्रयोग है, जैसे दादी सब धामों पे जाके यात्रा कर रही है, वैसे हमारे जो सब स्थान है हम जाके उधर प्रकाश दे सकते हैं। और जैसे बाबा ने कहा, दादी ने कहा, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो वतन में क्या हो रहा है ये हमें स्पष्ट अनुभव हो सकता है। फिर था 30 अगस्त को मोहिनी बहन जी मधुबन के। तो फिर ये जब वतन में गए तो उन्होंने देखा कि एक लाइट की पहाड़ी है और लाइट का ग्लोब है। लाइट की पहाड़ी पर दादी जी और बाबा खड़े हैं और ग्लोब है जो चमक रहा है और गोल गोल घूम रहे। और फिर मोहिनी बहन जी नीचे खड़े और फिर आहिस्ते आहिस्ते नीचे आता है और फिर उसके बाद बाबा उनको बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं और वो जैसे कि प्रेम में डूब गए हैं और समा गए हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, देखो मैं आज आपकी दादी को सारे विश्व की परिक्रमा करा रहा हूँ, सारे विश्व में दादी सेवा कर रही है और सभी आत्माओं को अब दादी जी से और बाबा से अनुभव हो रहा है। ये सीन वहाँ पे थी। फिर बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी और कहा कि आज क्या संदेश लाई हो। तो फिर उन्होंने कहा कि सब बाबा दादी को बहुत याद करते, दादी ने इतनी सेवा की सबकी। फिर यहाँ पे दादी बाबा ने बहुत सारी महिमा की दादी की कि क्यों नहीं याद करेंगे ना इस आत्मा को, क्योंकि इस आत्मा ने पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया। ये बाप समान आत्मा थी, इसने बाप का संदेश फैलाया। ये त्यागी आत्मा थी, कुर्बानी आत्मा थी, इसने बहुत कुर्बान किए और ये आत्मा का मोह किसी में भी नहीं था। न्यारी और प्यारी आत्मा थी, न पदार्थों में था, न वस्तुओं में था, न व्यक्तियों में था और इसने हमेशा हाजी का पाठ पक्का किया और हमेशा सत्यता, पवित्रता, प्यार, शांति की रहन की दृष्टि से सारे ब्राह्मण परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा। और फिर ऐसी आत्मा को तो सभी याद करेंगे, तो फिर ऐसी बच्चों की तो गुणों को भी सब याद करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि विदेशी बच्चे दादी के लिए गुणों की माला बना के लाए हैं। तो कहा कि ऐसे ये तो गुणों की माला का मन का ही है ये था। फिर कहा कि कॉटेज भी बहुत सुना सुना लगता है। तो फिर बाबा ने कहा कि कॉटेज क्यों सुना सुना लगता है, बाबा को तो दादी ने कॉटेज में ही बिठाया है और कॉटेज से शक्तिशाली वाइब्रेशन जानी चाहिए सबको। फिर मोहिनी बहन ने कहा कि अभी दादी जानकी को मुख्य बनाया है। तो फिर बाबा ने कहा कि हाँ, जैसे कि त्रिमूर्ति का गायन आप कहते हो ना, त्रिमूर्ति दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी। जब तो फिर वो सीन इमर्ज हुआ और जैसे दादी जी तो दिल में समाई हुई थी और दोनों दादी को जैसे बाबा ने बाहों में ले लिया। और फिर बाबा ने कहा कि जानकी दादी को अभी डबल सेवा करनी है। तो फिर जानकी दादी ने जैसे कहा कि मैं तो अभी सेवा पे तत्पर हूँ और गुलजार दादी जी से कहा कि ये तो डबल पाठदारी है ही, ये तो भगवान का रथ है और ये तो ज्ञानी तो आत्मा है। और प्रकाश मणि दादी के लिए कहा कि इसमें तो सेवा का संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है, तो समय को समय जाने के लिए बाबा ने बच्ची को अपना साथी बनाया है। फिर बाबा ने कहा कि प्रकृति की हलचल अभी बढ़ने वाली है, साइंस की हलचल, साइंटिस्ट की हलचल, राजनीति की हलचल, तो ऐसे समय पर आप लोगों को क्या करना है, तो अचल अटल स्थिति में इकोनॉमी होकर चलना है। ये इसमें बाबा ने संदेश दिया। और फिर बाबा ने मोहिनी बहन जी को कहा कि अब आप दोनों को क्या करना है, मोहिनी बहन और मुन्नी बहन को, कि जैसे दादी ने आप लोगों को पालना दी, तो आप लोगों को इस पालना का रिटर्न देना है। तो दादी की सखी थी ना, तो जो भी पाया उसकी भाषा दूसरों को आप लोगों से आनी चाहिए, उस पालना की, उस प्यार की, उस शक्ति की। और दादी कॉटेज को आप लोगों को ऐसा बना कर रखना है। और फिर और जो ड्रामा में था उसको निश्चिंत समझना है और उसमें कल्याण है ऐसा समझकर आगे चलना है। और हर बात में कल्याण देखते हुए समझना है, इसमें ही मेरा कल्याण भरा हुआ है। फिर मोहिनी बहन ने कहा कि आज मैं भोग में बूंदी और पूरी लाई हूँ, ये दादी का शायद फेवरेट भोग था। तो उन्होंने कहा आपका बहुत मनपसंद भोग है तो ये मैं आपके लिए लाई हूँ। फिर सारे नर्सेज और भाई बहनों को इस संदेश में बाबा ने याद किया और बहुत दिल की दुआएं दी। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर साहू, इनका सबका नाम लेते हुए याद किया और दुआएं दी। मोहिनी बहन को दुआओं से सदा आगे बढ़ती रहेगी और दादी के प्यार की पालना का अनुभव कराती रहेगी, ऐसे कहा। फिर ये जैसे इसमें लाइट की पहाड़ी और वो ग्लोब, ये जैसे योग का प्रयोग है हमारे लिए और हम भी उसके ऊपर खड़े रहकर सभी आत्माओं को अनुभव करा सकते। फिर पांडव भवन से भोग गया 30 अगस्त को मोहिनी बहन न्यूयॉर्क के। तो फिर इस बार इस समय दादी का जैसे वतन में साक्षात्कार मुहूर्त का रूप था और दादी का चेहरा जैसे बहुत चमक रहा था। तो फिर मोहिनी बहन जी ने पूछा कि आप दादी आज क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आज बाबा इनको साक्षात्कार मुहूर्त के रूप में है ना दिखा रहे हैं, तो जैसे कि ये बच्ची जैसे कि पूजनीय रूप में है और बच्ची के चेहरे से अव्यक्त बाप दादा भी दिखते हैं, क्योंकि ये बच्ची बाप के याद में समाई हुई है। तो बाबा ने ये कहा इनके बारे में, क्योंकि ये बच्ची विशेष अपनी उदारता से, रहम भाव से, अपने गुणों द्वारा सबकी पालना की है। तो जो भी अभी इसमें हमारे लिए संदेश है कि जो समझदार और जिम्मेदार बच्चे हैं, ऐसे जिम्मेदार बच्चों का फर्ज क्या है कि कदम कदम पर ये याद रखना कि दादी ने किस तरह से यज्ञ की पालना की, वैसे ही स्वरूप बन करके हमें भी पालना करनी है। फिर उन्होंने कहा आगे कि हमारी बड़े भाई बहनों की मीटिंग थी कल, तो सब कह रहे थे कि दादी को अभी साकार में होना चाहिए, दादी की साकार में बहुत आवश्यकता है। तो फिर कहा कि बाबा ने कहा कि नहीं, अभी विश्व के प्रति दादी की और अलग पार्ट है दादी का। फिर बाबा ने एक थोड़ा सा रहस्य यहाँ पे खोला कि एडवांस पार्टी का जैसे पार्ट है, लेकिन दादी का पार्ट थोड़ा भिन्न है। तो मोहिनी बहन थोड़ा रुके कि दादा कोई बाबा कुछ और रहस्य खोलेंगे, लेकिन बाबा ने कुछ और रहस्य नहीं खोला यहाँ पर। फिर आगे बात चली। फिर बाबा ने यहाँ पर बहुत अच्छा कहा कि जब आप बाप दादा और दादी के गुणों का सिर्फ सिमरन करते रहोगे ना, तो भी मधुबन का वातावरण शक्तिशाली होगा और उसमें पावर भरती जाएगी और जैसे कि खुशी का वातावरण और हल्कापन होगा। और जो भी यहाँ पर आएंगे उनको ऐसे लगेगा कि ये तीर्थ स्थान है और ये यादगार स्थान बनता जाएगा, लोगों को ये फीलिंग आनी चाहिए यहाँ पर आके। फिर दादी से कहा कि दादी मधुबन वालों से आप कुछ कहना चाहती है। तो दादी ने कहा कि जब भी मैं आप लोगों से कुछ भी कार्य के लिए कहती थी तो आप लोग जैसे कि एकदम एक्शन में आ जाते थे, और कोई भी कार्य आप लोगों को देती थी तो आप लोग एकदम एक सूत्र में एक सब मिलकर कार्य करते थे, तो एक संगठन में करते थे और एवर रेडी होकर करते थे। तो अभी भी आप लोगों को यही करना है। फिर सातवां संदेश 31 अगस्त को शशि बहन जी। तो फिर ये जो वतन में गए तो उन्होंने देखा एक पुष्पक विमान बड़ा सा आगे जा रहा है लाइट का और उससे किरणें फैल रही है और उसके पीछे झूम सा बहुत सारे पुष्पक विमान है और आगे जा रहा है। फिर उस पुष्पक विमान नीचे उतरा तो जैसे कि धुन बजने लगी म्यूजिक, और फिर उससे सुंदर सुंदर किरणें निकलने लगी। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कार्य करने जाती है, उसके साथ एडवांस पार्टी वाले भी जाते हैं। तो वो जो दूसरे पुष्पक में मानते हैं वो छोटे छोटे, वो एडवांस पार्टी वालों के थे। ये एक सीन था। और फिर दूसरा एक सीन देखा उन्होंने, एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा मंडप है और उसमें दादी जी खड़े हैं देवी के स्वरूप में, और सामने विश्व का ग्लोब है और विश्व के ग्लोब को दादी जी दृष्टि दे रहे हैं और ग्लोब फिर परिवर्तन होते जा रहा है और विश्व की जो आत्माएं हैं उनको अनुभूति हो रही है और जो खाली खाली रहती है उनको दादी जी संपूर्ण कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं अपने रहमदेव स्वरूप से, और कुछ ना कुछ उनको प्राप्ति हो रही है। और फिर दादी जी का सहस्त्र भुजाधारी स्वरूप देखा, क्योंकि दादी जी कोई भी चीज अकेले नहीं करते थे, सबको मिलकर करते थे, तो वो एक रूप देखा। और इस संदेश में एक बात थी कि अभी हद के कार्य से, हद की बातों से बुद्धि को हटाकर बेहद में लगना है, तो ये एक था। तो ये योग के प्रयोग थे इसमें। फिर रुक्मणी बहन जी, ये था 1 सितंबर को। तो ये जब वतन में गए तो देखा कि दादी जी दिख ही नहीं रहे आज वतन में, और फिर बाबा थे, और फिर बाबा उनको आगे लेके गए तो तारा मंडल था और बहुत सारे तारे चमक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बताओ अपने, आपकी दादी जी कहाँ है यहाँ पर। तो फिर उन्होंने देखा तो चंद्रमा के बाजू में एक तारा बहुत चमक रहा था, तो कहा कि ये दादी जी है। तो फिर उन्होंने कहा कि बताओ दादी जी जब चंद्रमा और तारे देखती थी तो उन्हें कौन सा गीत याद आता था। तो कल किसी ने बोला तारे जमीन पर। तो ये गीत है, उन्होंने सोच में पड़ गए पहले, फिर उनको याद आया ना ये चांद होंगे, वो गीत याद आने लगा। और फिर वो कहने लगे कि दादी आपका, फिर बाद में और सीन इमर्ज हुए कि दादी आपका कमरा, आपका स्थान बहुत सुना सुना लगता है। तो बाबा बोले, बच्ची जैसे पांडव वन में जाते हैं तो बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, शांति स्तम, चारों धाम अपनी तरफ खींचते हैं, तो ऐसे ही ये शांति वन जो है ना, ये दादी जी की तपस्या और प्रकाश का स्थान बन जाएगा। और दादी जी का कमरा, बाबा का कमरा, कॉटेज, ये स्थान भी प्रकाश में और शक्तिशाली बन जाएगा, शक्तिशाली वायुमंडल का खिंचाव का होगा ये सब वहां पर, ऐसे कहा बाबा ने। और फिर दादियों को याद किया, तो कहा कि दादियों का प्यार है ना वो आपस में बहुत अटूट प्यार है, और बाप समान प्यार है इन लोगों का, क्योंकि बाबा ने इन बच्चों में कूट कूट कर प्यार भरा है, समान प्यार है और बहुत मीठा बनाने वाला प्यार है। जी था। फिर 2 सितंबर मोहिनी बहन जी मधुबन, अब इसमें भी बहुत सारे योग के प्रयोग है। ये जब वतन में गए तो देखा कि बगीचा था, दादी जी और बाबा नहीं दिख रहे थे, तो फिर आगे आगे गए तो बगीचा था, फिर बाबा बगीचे में खड़े थे और एक एक फूल को दृष्टि देते हुए तोड़ रहे थे, और दादी के हाथ में एक थाली थी पत्ते से उसमें, और तोड़ तोड़ के फूलों को रख रहे थे। और फिर दादी जी ने देखा मम्मी बहन आए, तो बोले आपको भी बहुत फूल पसंद है ना। फिर बाबा ने कहा कि इन सब फूलों की विशेषता अलग अलग है, बोलो फूलों की विशेषता। तो दादी ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 5-6 फूल ही पता है। फिर इन दोनों ने मिलके फूलों की विशेषता बताई। फिर बाबा ने कहा कि एक और प्लेट थी जिसमें रुमाल था, तो कहा रुमाल हटाओ, इसमें कुछ कागज के फूल, मोम के फूल और कपड़े के फूल थे, लेकिन इसमें रंग थे, रूप थे और किसी में खुशबू भी थी। फिर बाबा ने कहा कि इन फूलों में और इन फूलों में अंतर क्या है, तो कहा कि ये चैतन्य है, ये जड़ है। तो फिर हर फूलों की विशेषता बताई कि किसी में खुशबू है, किसी में सुगंध है, किसी में रूप है। फिर बाबा ने कहा कि सबसे अच्छे फूल कौन से हैं, तो दादी ने कहा गुलाब का और चंपा का, तो फिर इनकी विशेषता बताओ, तो उन्होंने बताया। फिर बाबा ने गुलाब का फूल उठाया और गोल गोल घुमाया, तो गोल गोल घुमाते हुए उसकी पंक्तियां गिर झड़ गई, और दूसरे फूल को गोल घुमाते हुए पंक्तियां नहीं झड़ी। तो बाबा ने कहा कि यही विशेषता है कि ना पुराने संस्कार, न पुराने स्वभाव, न पुराने संबल कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ बीज रह जाता है। तो इसी तरह से आत्मा रह जाती है, आत्मा अविनाशी है। इसी तरह से आपकी जो दादी है, उनको फूलों से सजाया था, गुलाबों से। और ये जो दादी है ना, ये भी इसका भी किसी में मोह नहीं था, ये भी न्यारी और प्यारी थी, ना ही किसी संबंध में मोह था। इसके भी सारे पुराने संस्कार स्वभाव सब कुछ समाप्त हो गए थे। तो दादी के अंत में भी यही स्थिति थी। और जब दादी के पास आप अंत में भी जाते थे तो दादी सिर्फ आँख खोल के दृष्टि देती थी। तो दादी का अंत में जो पाठ था ना, वो नजर से निहाल करने का पाठ था। और दादी का मुरली से भी बहुत प्यार था, तो दादी अंत तक भी मुरली सुनती थी। तो फिर मैंने बहन ने कहा, जब इतनी अच्छी स्थिति थी तो आपने क्यों बुला लिया उनको? तो फिर बाबा ने यह राज खोला कि मैंने नहीं बुलाया बच्ची, आपको एक राज बताता हूँ कि दादी जब आई वतन में, तो मैंने बच्ची को कहा कि बच्ची वापस जाओ अभी, क्योंकि अभी आपकी जरूरत है नीचे। तो दादी ने जब पीछे मुड़ के अपनी देह को देखा, तो बाबा को कहा कि बाबा अभी मेरी जो सेवा थी ना इस शरीर द्वारा, यह पूरी हो चुकी है और इस शरीर से अब मैं सेवा नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं नहीं कर सकूंगी। तो बाबा ने कहा कि वो नहीं कर सकोगी बच्ची, तुम तो सर्वशक्तिमान की बच्ची हो, तुम तो माया जीत प्रकृति जीत हो। तो दादी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। तो फिर बाबा ने कहा कि मैं ऐसी समान बच्ची की आज्ञा, इसकी मतलब इस मुरब्बी बच्चे की बात कैसे नहीं मानू, फिर इसलिए मैंने उसको वतन में बुलाया। तो मैंने तो इसको वापस भेजा था, लेकिन वे ही वापस आई। फिर ये आत्मा को, इस आत्मा ने कदम कदम पर हर आत्मा का श्रृंगार किया है, और हर आत्मा को कोई ना कोई शक्ति का कोई ना कोई वरदान दिया है, इसीलिए इस आत्मा को कोई भुला नहीं सकता। और फिर बाबा ने कहा कि देखो, आप लोगों को अभी अलर्ट होकर ऑलराउंडर सेवा में, ऑलराउंडर सेवा का पार्ट बजाना है। फिर यहाँ पे मुन्नी बहन और मोहिनी बहन को वापस कहा बाबा ने कि कैसे आप दोनों को पालना देनी है। मुन्नी बहन से कहा, मुन्नी को अभी मुन्नी नहीं रहना है, लेकिन लक्ष्मी बनना है। जैसे उसका नाम है लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी स्वरूप होकर रहकर दादी ने जो इतनी बड़ी यज्ञ की सेवा उनको सौंपी है, उसकी उसको निभाना है, निमित्त बनकर सबको संतुष्ट करना है। और दादी की आज्ञा सदा जैसे मानी है, और अब भी यही दादी की आज्ञा है, उस आज्ञा पर आपको चलना ही है। फिर दसवां संदेश ये था कैलाश बहन जी। तो इधर बाबा ने, इन्होंने बाबा को पूछा है, इधर एक और अच्छा है, ये एक ग्रुप अलग अलग ग्रुप में मौजूद है सामने। तो बाबा ने इन्होंने पूछा कि अलग अलग क्यों बच्चे, अलग अलग क्यों? तो बाबा ने कहा, अलग अलग नहीं है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। फिर मधुबन में बाबा आए, और जैसे कि है ना, हर बच्चे जैसे कार्य कर रहा है, और बाबा अपना हिम्मत का हाथ हर बच्चे के सिर पर हिम्मत और शक्ति का हाथ सब बच्चों के सिर पर फैला रहे हैं। जैसे तो ये योग का प्रयोग है, जब हम कार्य क्षेत्र पर है, जैसे बाबा का हाथ हमारे सिर पर है बार बार। और फिर बोला कि बच्ची, बच्चे कुछ पूछते हो नीचे? तो कहा कि हाँ बाबा, आपने कहा था कि जब दादी जी वतन में आए तो पांच तत्वों ने स्वागत किया, तो कैसे? तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्ची, जब दादी जी आए तो पांच ही तत्व अपने फुल फोर्स में थे और बहुत ही खुशी में झूम रहे थे। धरती जो थी ना, वो इतनी खुश थी और अपने आप को इतनी भाग्यशाली समझ रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कि इतनी महान विभूति जो है, इतनी महान आत्मा का जो संस्कार है, वो मेरे ऊपर हो रहा है और मेरा आधार लिया जा रहा है। इसी तरह से हवा भी इतनी खुशी में झूम रही थी कि इतने झूमते झूमते उसने दादी को ऊपर पहुंचा दिया। और अग्नि भी अपनी संपूर्ण स्टेज में थी कि वो सहयोग दे रही थी संस्कार करने में। और बरसात भी अपने गुलाब जल छिड़क रहा था। और क्या बाकी रहा? आकाश भी बड़ा खुशी से है ना दादी का स्वागत कर रहा था। तो ये था कैलाश बहन जी का। फिर रुक्मिणी बहन जी का, ये ही पांच तत्व हमारे भी स्वागत करेंगे। रुक्मिणी बहन जी का था, इसमें दादी जी का उन्होंने स्वरूप देखा, ऐसे बहुत बड़ा स्वरूप है और बहुत सारी भुजाएं हैं और उसमें से किरणें निकलती जा रही है, और सब हाथ के नीचे बच्चे आते जा रहे और सब बच्चों को दादी जी कोई ना कोई वरदान देते जा रहे सब बच्चों को। और फिर दूसरा एक सीन इमर्ज हुआ जिसको दादी जी ग्लोब पर खड़े हैं और सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं और बाबा और दादी बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो यज्ञ में कितने सारे बच्चे अभी आते जा रहे हैं। तो वरदान शक्तियां सकाश सबको मिलती जा रही है। और फिर जैसे कि जब दादी जी गए तो बाबा ने ये कहा कि देखो अभी जब ये सारा कुछ टेलीकास्ट हो रहा था ना सब जगह पे जब दादी गए तो जब बाबा की इतनी प्रत्यक्षता नहीं हुई जितनी दादी की प्रत्यक्षता हुई। तो बाबा ने कहा कि देखो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है ये अभी सबको पता चलने लग गया है दादी के द्वारा कुछ तो है ये लगता है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारी संस्था कुछ है। तो बड़ा बहुत बड़ा रूप से ऐसा ऊंचा कार्य कराएगा जो अभी तक नहीं होगा नहीं हुआ है ऐसा कार्य बाबा इनसे कराएगा। फिर जैसे रुक्मणी बहन जी का संदेश था तो बाबा ने तो इन्होंने कहा कि दादी जी बड़ी पर दादी जी कैसी है पूछा तो कहा कि आपकी व्हीलचेयर और उनकी व्हीलचेयर जब साथ में चलती थी तो बहुत अच्छा लगता था। तो दादियों को याद किया इस संदेश में। और लास्ट संदेश था शशि बहन जी का वो तब 5 सितंबर को तो फिर देखा सनराइज तो सनराइज था और किरणें निकल रही थी फिर बाबा खड़े थे और फिर दादी थे तो बाबा ने कहा कि देखो जैसे कि है ना इस बच्ची ने कोने कोने तक ज्ञान का प्रकाश फैलाया कि 24 घंटे ही ज्ञान की ग्रिप जलती रहती है इस धरती पर। और फिर अचानक से सूर्यमुखी बाबा के हाथ में आ गया और उस पर सूर्य की किरणें पड़ने लगी और फिर एक एक हाँ पंखड़िया निकल कर दादी का कोई मुकुट बन रहा है कोई गले का हार बन रहा है और वो जैसे कि ऋषि महाराज का रूप बन गया दादी जी का। तो ये सीन मौज हुआ। तो मतलब बाबा ने कहा जैसे कैसे ये आत्मा ने सबका कदम कदम पर श्रृंगार किया है ना तो ये दादी का जीवन सबके लिए एक समान एग्जाम्पल था। तो आज हर बच्चा अपने दिल के उद्गार दादी के समान प्रकट कर रहा है उसी से दादी का श्रृंगार हो रहा है। तो दादी तो कितना निर्माण से उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया लेकिन ये सब मेरे सेवा साथियों ने किया है। फिर दादी ने कहा जब मैं साकार में थी और संकल्प करती थी तो सब सामने आ जाते थे और संगठित रूप में मजबूत होकर सब कार्य करते थे एक सूत्र में बनकर करते थे। तो दादी के सामने हाजी का पाठ पक्का करते थे तो अभी भी सबको ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पर दादी ने विशेष तीन बातें कही। एक तो कहा बाबा से सच्चा स्नेह रखना है बड़ों को रिस्पेक्ट देना है और ब्राह्मणों के संगठन को मजबूत रखते हुए बाबा के कार्यों में तत्पर रहना है तो बहुत जल्दी विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ये हो गए 12 संदेश। और फिर उसके बाद तो बाबा की मुरली चली 6 सितंबर को फिर दादी जी की पदरामनी हुई उस हाँ वही पढ़ रहे उसमें भी जैसे दादी जी ने बोला कि सदा एक दो को दादी जी ने डायमंड हॉल में बाप दादा को भोग स्वीकार कराया और दादी जी की पदरामणी हुई। दादी ने सारी सभा को दृष्टि देते अपना साकार रूप प्रकट करते हुए सब तरफ लंबी बाहें फैलाकर हर एक को अपने दिल में समाया। तत्पश्चात सभी मुख्य दादियों और भाई स्टेज पर दादी से मिलने सम्मुख आए और सभी ने हाथ मिलाकर दादी जी से नयन मुलाकात की। उसके बाद दादी को मुन्नी बहन ने यज्ञ का भोग खिलाया। दादी जी ने पूरे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो महावाक्य उच्चारे और इस प्रकार है दादी जी बोली सदा एक दो को सम्मान देते हुए श्रेष्ठ स्वमान में रहते स्वयं को और विश्व की आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते रहना सर्व से स्नेही बनने का रूप प्रत्यक्ष करना दुनिया में भी प्यार चाहिए सच्चा प्यार तो प्यारे रहना और सर्व को आत्मिक प्यार की अंजलि देते रहना यही हमारी याद है। अच्छा और फिर उसके बाद गुलजार दादी का संदेश है और उसमें वो हाँ बाबा पहले आए हाँ वो तो बहुत बड़ी मुरली है। और गुलजार दादी का संदेश है कि कैसे उस बच्चे का जन्म हुआ है किस बहुत रिलीजियस मातपिता है और उस माता को पता भी नहीं है कि उसके गर्भ में बच्चा है, उसकी एज ऐसी ऊपर हो गई है जिसे जो बच्चे होने की एज होती है उससे ऊपर हो चुकी है वो एज और उसके गर्भ में बच्चा है और 5-6 महीने पर उसको पता चलता है जैसे कि उसके गर्भ में अभी बच्चा है। तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान का कोई अवतार है अभी हमारे लिए और भगवान ने इस बच्चे को भेजा है। वो बाबा की मुरली चली है वो नहीं बोल
ओम शांति।